विवेक दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, इन शक्तियों को पाकर के भी उसका उपयोग जैसे करना चाहिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों की बड़ी भारी मूर्खता है। बुद्धि के द्वारा हर समय में ये विचार करना चाहिए, जिनके ऊपर अपना अधिकार है, अपने स्त्री के ऊपर, अपने पुत्र के ऊपर, धन के ऊपर, मकान के ऊपर, तो क्या करना चाहिए, उन सब को भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि यदि हम आज यहाँ से चल बजे तो क्या उस कल उस स्त्री से या पुत्र से या धन से या मकान से संबंध है? बोले बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं है तो जब तक इस देह में प्राण है तब तक उससे अपने को लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाना क्या है कि पुत्र को जो है भगवान की भक्ति के मां लगा देना है, ये विशेष लाभ उठाना है। लड़का जो है ईश्वर की भक्ति में लग जाता है तो वो एक प्रकार से कल्याण कर देता है। एक लोकोक्ति है, कहीं शास्त्र के मन वो बात लिखी होगी कि जिस समय के मां ध्रुजी महाराज जो है उनको भगवान ने कहा कि तुम वरदान मांगो, तो ध्रुजी ने कहा कि मैं जब घर से चला था तब तो मेरे हृदय में राज की इच्छा थी, किंतु अब मेरे हृदय में कोई राज की इच्छा नहीं है, इस बात से मुझको कोई बात की भी इच्छा नहीं है। बोले ठीक है, तुम्हारे कोई इच्छा नहीं भी है तो मेरे संतोष के लिए तो मांगना चाहिए। यदि कोई मेरी भक्ति से काम बात करता है राज के लिए या धन के लिए करता है और फिर उसका साधन करते करते निष्काम भाव हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं चाहता, तो लोगों पर यह असर पड़ेगा कि भगवान उसकी मति फेर देते हैं, देना लेना तो कुछ भगवान को है नहीं और मति फेर देते हैं। विश्वास है तुम राज की इच्छा से है तो राज तो तुम्हारे को लेना ही होगा, हाँ उसके अलावा और भी तुम्हारे को दिया जा सकता है। तो ध्रुव को और भी बहुत से वरदान भगवान ने दिए। एक बात जो है वो नहीं है, भगवान ने बहुत ध्रुव को पूछा कि भाई तुम और भी कुछ चाहो, तो ध्रुव ने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माता जो है, उनके दो माता थी, एक जन्म के देने वाली एक ताना मारने वाली, ताना मारने वाली जो माता उसका नाम सुरुचि था और उसका नाम सुनीति था जो जन्म के देने वाली माँ है। उसने कहा कि भी मेरी माँ ने मुझको ताना मारा तब तो मैं एक प्रकार से घर को छोड़कर के आपकी भक्ति के वहां लगा, और यदि वो माँ एक प्रकार से आक्षेप नहीं करती, ताना नहीं मारती, तो मैं एक प्रकार से थी घर के वहां ही रहता तो आपकी प्राप्ति मुझको नहीं होती। तो इसे के मां मेरी माता जो है उसने समझो गुरु के जैसा काम किया, तो मैं यही चाहता हूँ कि उस मेरी माता जिसने मुझको बोल मारा था उसका कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। बोला तथा तो आप देखो कि कितनी उदारता है कि माता ने तो एक प्रकार से उसको झलक कर ये कहा कि तू पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, यदि पिता की गोदी में बैठना था तो तू मेरे क्यों नहीं ऐसा जन्म लिया। वो बेचारा कांपता है, रोता है कि देखो जन्म लेना कि मेरे हाथ की बात है, समझा? बड़ा दुख है उस तरह का, दुखित होकर अपने जन्म के देने वाली माता के पास माया, सुन की श्वास से भर गया और माता उसको देख करके रोने लगी। पूछा कि बेटा क्या कारण है, तो उन लड़के ने सच्ची सच्ची बात बतला दी। बोला कि जो सुरुचि ने जो बात कही ठीक है, मैं महाराज करके त्यागी गई हूँ इसलिए मेरा कोई आदर नहीं है और तू मेरे पैदा हुआ इसलिए तेरा भी आदर नहीं है, जो सुरुचि के जो लड़का उत्तम है वो राज का अधिकारी है, तू नहीं है, पिता की गोद में बैठने का उसका ही अधिकार है। गोद में बैठने का अधिकार है, उसके राज पर अधिकार है, तो इसलिए ये बात ठीक है। उसने सोचा कोई ऐसा उपाय है कि राज मुझको मिले। बोले कि ईश्वर की कृपा से तो मिल सके, उसकी भक्ति तुम करो। तो एक प्रकार से थी भगवान की भक्ति के उद्देश्य से थी ध्रुव ऐसा अपने घर को छोड़ करके बन के मां तो निकल गया। तो यह जो कथा है कि अपने माता के लिए वरदान मांगा, ये एक लोकोक्ति है, और कहीं की कथा हो तो हमको मालूम नहीं, कहीं शास्त्रों में भी हो सके, किंतु सुनी हुई बात है। अपने यहाँ कहने का अभिप्राय यही है कि देखो भक्तों की उदारता, भगवान की भक्ति का कितना भारी प्रभाव है। जो ध्रुव क्रोधी था, वह ध्रुव एक प्रकार से उदार चित्त वाला एक महापुरुष बन गया भगवान की भक्ति के प्रभाव से। भगवान की भक्ति का बड़ा भारी प्रभाव है ऐसा जान करके हम लोगों को तत्परता के साथ में भगवान की भक्ति का साधन करना चाहिए। बहुत से भक्तों की कथा आती है, उसमें समझो कि ऐसी ऐसी बातें मिलती है जो अलौकिक बातें, और उनको हम धारण कर ले तो शीघ्र ही अपने बेड़ा पार हो सकता है। प्रक्रम चिराता ये कि हम लोगों को ये विचार करना चाहिए, अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। तो काम ये लेना है कि अपने जो लड़का है तो उसको भगवान के हम भगवान की भक्ति में लगा दे, तो उसका भी उद्धार है, हमारा भी उद्धार है। जो आक्षेप करके के ध्रुव की माँ ने ध्रुव को लगाया तो उसकी माँ का उद्धार हो गया, समझो कि ईर्ष्या का और देश का बर्ताव करके भी। तो भक्तों के साथ में किसी भी प्रकार से संबंध जुड़ जाता है तो उनका सहज में उद्धार हो सकता है। और फिर लक्ष्मण की माता जो सुमित्र है उसकी तो बात ही क्या है, उसने तो बड़ी प्रशंसा की है। उत्तरवती युवती जग तो रघुवर भक्त जासूसूत होगी। वही नारी पुत्रवती है कि जब पुत्र भगवान को भक्त हुए, नहीं तो गाय और भैंस की जो ब्याह गई उसे तो बांध ये सोची है। इससे ये इस बात सिद्ध हो जाती है कि जो भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसकी माता का उद्धार हो जाता है। कुलंग पवित्र जननी कृतार्था वसुम धरा पुण्यवती चतीन अपार समित्र सुख सागर लीनंग परे ब्रह्मनिश्चित है। परब्रह्म परमात्मा में जिनका चित्र विलीन हो गया है और जिसके आनंद का पार नहीं है, ऐसा जो महात्मा पुरुष है उन महात्मा के संसर्ग से उसका कुल पवित्र हो जाता है। और जन्म के देने वाली माँ तो कृतकृत माने मुक्ति हो जाती है, और जहाँ उनके चरण दिखते हैं भूमि भी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से थी समझो की महात्म ऐसा बतलाया गया है, महापुरुषों का ऐसा महात्म बतलाया गया है। इस बात को ख्याल में लाकर के और हम लोगों को खुद महापुरुष बनना चाहिए, और अपने घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो वे भी एक प्रकार से संसार सागर से पार हो जावे। अपनी जो स्त्री है उसको भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, और अपने पास के वहां जो धन है उसको भी, क्योंकि जब कल हमारी मृत्यु हो जाएगी तो कोई भी चीज हमारे साथ में जाने की नहीं, न स्त्री न पुत्र न धन न मकान, तो फिर ये क्या काम मांगे। तो बड़ी उदारता के साथ के वहां लोकोपकार के बीच के वहां समझो इन सबको लगाना चाहिए, और ईश्वर की भक्ति के वहां ईश्वर की भक्ति के काम के वहां लगाना चाहिए, जिससे शीघ्र हमारी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो जावे। तो ईश्वर ने हम लोगों को जो विवेक दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, उसका उपयोग ठीक करना चाहिए। हम लोग जो ऐसा आराम में उसका उपयोग करते हैं, धन कमाने में उपयोग करते हैं, या समझो कि बुरे कामों में उपयोग करते हैं, पाप के काम में, प्रमाद के काम में, और निद्रा के काम में, समझो कि अपने इनका जो प्रयोग करते हैं मन बुद्धि नहीं, हमारी मूर्खता है तो अपने गले में छुरी लेकर के मरने के समान है, फांसी लेकर मरने के समान है। पासोई को ममता अभिमान है, फांसी क्या है कि ममता अभिमान। ममता अभिमान जिससे बढ़े वो तो एक प्रकार से थी महान हानिकर है हमारे लिए। तो ये समझ करके अपने समझो कि इन सब से अपना काम लेना चाहिए, इनसे अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर के हम लोगों को घोर पश्चाताप करना पड़ेगा यदि हम सचेत नहीं होंगे। आप ख्याल करके देखो संसार में तुम्हारा कौन है, थोड़ा गंभीरता से सोचोगे तो यही बात मिलेगी कि मतलब और मनमान है। यानी संसार जो है वो अपने जो प्रेम करती है अपने स्वार्थ को लेकर के, श्रीकृष्ण रामायण में बताया है स्वर तनित सकल जग माई सपने वो प्रभु पर मारत नाई। हे प्रभु जब कोई स्वार्थ के मित्र है, कोई भी परमार्थ का मित्र सुनिए सपने में भी तो देखने में भी आता है। कोई मनुष्य समझो कि अपने वृद्ध हो गया है, कमाने की शक्ति नहीं है, तो घर वाले चाहते हैं कि जल्दी मर जा तो अच्छा है। कोई घर के वहां लड़ाई करने वाली स्त्री है तो घर के चाहते हैं कि अपनी चंडाल है किसी प्रकार से इसकी जल्दी कोई मृत्यु हो जाए तो अच्छी बात। कोई घर के वहां पुराना रोगी है और वो रात दिन तंग करता है तो घर वाले चाहते हैं कि हे भगवान अब इसको जल्दी उठा लो। तो सब अपने स्वार्थ के मित्र हैं। परमार्थ का मित्र वो है कि समझो कि उसके हित के लिए उसे प्रेम करे। तो ऐसे भगवान है या भगवान के भक्त हैं। हे तू रजित जग प्राण रोगी है और वो रात दिन तंग करता है तो घरवाले चाहते हैं कि हे भगवान अब इसको जल्दी उठा लो। तो सब अपने स्वार्थ के मित्र हैं। परमार्थ का मित्र वो है कि समझो कि उसके हित के लिए उसे प्रेम करे। तो ऐसे भगवान है या भगवान के भक्त हैं। हे तू रजित जग जुग उपकारी तुम तुमार सेवक असुरारी। हे असुरारी या तो आप हो करके आपका भक्त है, हेतु रहित हित करने वाला प्रेम करने वाला और दुनिया में कौन है। तो यह बात सोच करके हम लोगों को अपना जीवन जो है भगवान के मां श्रद्धा प्रेम बढ़ाना चाहिए और महात्माओं के मां श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि प्रेम तो भगवान से ही करना चाहिए। भगवान का जो स्वरूप है वो एक प्रकार से अलौकिक है, दिव्य है, प्रेम करने के योग्य है। और महात्माओं का जो शरीर है वो तो हार्डमंस का पिंजर है। महात्माओं के तो मां श्रद्धा ही करनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब है कि उनका जो वचन है वो भक्ति पूर्वक पालना चाहिए। भक्ति पूर्वक उनके वचनों का पालना करना ये श्रद्धा है, बस और किसी आवश्यकता नहीं। अरे ईश्वर के तो दर्शन से उद्धार हो जाता है और उनके साथ प्रेम करने से उद्धार हो जाता है और श्रद्धा से भी हो जाता है। और महात्माओं में तो श्रद्धा की प्रधानता है, ईश्वर में जैसे प्रेम की प्रधानता और महात्माओं में श्रद्धा की प्रधानता। एक अनन प्रेमी होता है उसको ईश्वर की आज्ञा का ज्ञान नहीं है एक प्रकार से, तो ईश्वर उस पर नाराज नहीं होते चाहे उसकी आज्ञा का पालन नहीं करें, किंतु अनन प्रेम होना चाहिए। जो पुरुष भगवान के वहां प्रेम करता है, खूब प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करता है उसको न तो शास्त्रों का ज्ञान है न अपने आप का ज्ञान है, केवल भगवान के मां प्रेम करता है तो उसके लिए सब माफ है। तो ईश्वर के मां तो विशुद्ध प्रेम करना चाहिए, अनंत प्रेम करना चाहिए और महापुरुषों के मां और शास्त्रों के बीच के मां श्रद्धा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ईश्वर के मां प्रेम भी और श्रद्धा रहता तो कहना ही क्या है, और भी बहुत उत्तम बात है। तो हम लोग श्रद्धा करने के जो योग है, प्रेम करने के योग, उनमें श्रद्धा प्रेम नहीं करते। अरे जो खतरे की चीज है जिसमें श्रद्धा करने से हमारा बड़ा नुकसान है, उसमें श्रद्धा करते हैं। जैसे हम लोग रुपयों से प्रेम करते हैं, कंचन से, कामनी से प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम करते हैं और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के वहां प्रेम करते हैं, ये तो हमारे लिए घातक है, ये प्रेम के पात्र नहीं है। प्रेम के पात्र तो भगवान ही है, उनमें अनंत और विशुद्ध प्रेम करना चाहिए। हम लोग श्रद्धा करते हैं संसार के मन, यह संसार है सो सत्य है, और ऐसा मान करके और समझो कि अपने जीवन को नष्ट करते हैं। और श्रद्धा करने के योग वे महात्मा पुरुष हैं कि जिनकी आज्ञा पालने से हमारा कल्याण हो सके। इन सब बातों को ध्यान में ला करके और अपने आत्मा का शीघ्र कल्याण हुए इसके लिए कटिबद्ध होकर के प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा मौका हम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। परंतु तो मनुष्य का शरीर मिलना मुश्किल है, पर वे मिल जाए तो समझो कि ये कली काल मिलना मुश्किल, और कली काल मिल जावे तो ये उत्तम देश जो है मिलना मुश्किल, फिर उत्तम देश भी मिल जावे तो फिर समझो कि अपने सत्संग मिलना मुश्किल। और ये सब मिलकर के यदि हम वंचित रह जाओ परमात्मा की प्राप्ति से तो हमारे समान कोई अभागा या कोई मूर्ख नहीं है, हमारे लिए बड़ी लज्जा की और दुख की और शोक की बात है। ईश्वर ने तो हम लोगों पर समझो कि बड़ी भारी दया कर दी, अब उससे हम लाभ नहीं उठावे तो हमारी गलती है। महात्माओं की तो हम लोगों पर बड़ी भारी दया है, किंतु उससे हम लाभ नहीं उठावे तो हमारी अपने गलती है। उनके वचनों को सुनकर के हम लोगों को मुक्त होना चाहिए और बारम्बार रोमांच होने चाहिए, आसोपात होने चाहिए। इस प्रकार से थी समझो कि हो तो बहुत जल्दी अपना कल्याण हो सके है। महात्माओं के वचन जो हमारे लिए आज्ञा है और वो एक प्रकार से थी हमारे मन के विरुद्ध हो और उसमें भी हमारे प्रसन्नता हो तो बहुत शीघ्र कल्याण हो सके। पर ये होता है श्रद्धा, तो इसमें श्रद्धा ही प्रधान है। हमारा जो भाव है वो उच्च कोटि का बन जावे ईश्वर के प्रति या महापुरुषों के प्रति या शास्त्र के प्रति, तो उद्धार होने में विलंब का काम नहीं, वो तो तुरंत ही हो सकता है। तो उत्तरोत्तर अपना भाव बढ़ाना चाहिए। भाव बढ़ाना यह है कि समझो कि किसी रूप में यदि ईश्वर की आज्ञा हमको मिल गई तो इतना मुग्ध होना चाहिए कि मानो एक प्रकार से इसकी सीमा नहीं। ईश्वर की आज्ञा कैसे कि हम एकांत में बैठ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, मैं बड़ा दुखी हूँ और समझो कि मेरे पुरुषार्थ के भरोसे मेरा उद्धार होना तो मुश्किल है, इस वास्ते मैं आपकी शरण हूँ, आप कृपा करके बतलाओ मैं क्या करूँ। और उस समय में पूछने पर हमारे हृदय में प्रेरणा हो जावे कि तुम ऐसा करो, बस उसके करने से हमारा तुरंत कल्याण हो सकता। ईश्वर तो कहते हैं कि मैं समझो कि जो कोई मुझसे मदद चाहता है उसको मैं मदद कर देता हूँ। तो भगवान प्रेरणा कर दी कि भाई तुम एक प्रकार से रात और दिन मेरा भजन ध्यान करो, बस अपने को लाख काम छोड़ करके रात दिन भजन ध्यान में लग जाना चाहिए, फिर समझो कि तुरंत ही उद्धार हो सकता है। ईश्वर ने आज्ञा कर दी कि तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, बस बहुत काफी हमको उपदेश दे दिया। अर्जुन के लिए भगवान ने जो आज्ञा दी उसका पालन करने से ही एक प्रकार से अर्जुन का तो उद्धार हो ही गया, और हम लोग भी पालन करें तो हम लोगों का भी उद्धार हो सकता है। इसी प्रकार से थी समझो कि गीता के एक श्लोक को भी हम अपने हृदय में धारण कर ले तो हमारा कल्याण हो सकता है। एक प्रकार से भगवान के वचन है और दूसरे समझो कि जो शास्त्र के वचन भी है, गीता शास्त्र भी है, और समझो कि शास्त्र तो मुनियों के वचन भी हो सकते हैं, किंतु भगवान के वचन है और शास्त्र है, इनका सेवन करें तो बहुत जल्दी हमारा कल्याण हो सके। महापुरुषों का जो जीवन है वो तो संसार के कल्याण के लिए ही है। उन्होंने अपना तो जो कुछ करना था कर ही चुके, अपने लिए तो उनको कोई कर्तव्य है ही नहीं। तस्य कार्य निविदते, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। नहीं तस्य करते ना तो ना करते नहीं कृष्ण ने नचास्त्र भूते कृष्य तर व्यवस्था है। उनको करने करके भी प्रयोजन नहीं और न करने करके भी प्रयोजन नहीं। और सारे भूत प्राणियों में उनका अपना समझो कि अर्थ का आश्रय कोई है ही नहीं। उनकी तो सारी जो क्रिया है तो वो कल्याण के करने वाली है। मनुष्य अपने भाव के अनुसार चाहे जैसा लाभ उठा सकता है। एक जो धातु की मूर्ति भगवान की है और उसे हम अपना भाव से अपने भाव से चाहे सो लाभ उठा सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति तक हो सकती है। फिर महात्मा तो भगवान का स्वरूप ही है। उदारा सर्वे ज्ञानी स्वात्म सभी उदार हैं, किंतु ज्ञानी जो महात्मा पुरुष है वे तो मेरा स्वरूप ही है, मेरी आत्मा ही है। महात्मा पुरुषों की जो क्रिया जो है वो प्रत्येक क्रिया कल्याण करने वाली होती है, उसके वहां हित भरा हुआ रहता है। प्रत्येक उनकी क्रिया जो है तो हित करने वाली रहती है, उसमें उपदेश भरा रहता है, उसमें शिक्षा भरी रहती है। उनकी कोई भी क्रिया निर्थक नहीं होती, अर्थ वाली होती है, किंतु श्रद्धा न होने के कारण से उसके अर्थ को हम लोग समझते नहीं। इसी प्रकार से समझो अपने उनका जो भाव है और प्रभाव है, उनके मन जो गुण है, सभी कल्याण करने वाले होते हैं। उनकी जो वाणी है, उनका जो उपदेश शिक्षा, उस एक एक उपदेश में और शिक्षा के बीच में कल्याण भरा हुआ रहता है। किंतु बिना श्रद्धा के बिना हम एक प्रकार से विशेष लाभ नहीं उठा सकते, साधारण लाभ तो उठा लेते। महात्मा पुरुष के जो चरित्र हैं, उन चरित्रों को हम शिक्षा के रूप में देखें तो उनसे हमको बड़ी भारी शिक्षा तो मिलती है। हर एक पदार्थ से हमको शिक्षा मिल सकती है, फिर महात्माओं की क्रिया से शिक्षा मिले, उनके चरित्रों से शिक्षा मिले, इसमें तो कहना ही क्या है। जैसे यह मशीन है, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो कुछ व्याख्यान दिया जाता है ये मशीन पकड़ लेती है। तो हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे यह मशीन पकड़ लेती है, इसी प्रकार हम जो बात सुने उसको पकड़ ले। जब मशीन की माफक हम नहीं पकड़ सकते हैं तो ये तो मशीन तो जड़ है, हम इससे भी गए बीते हुए। तो हर एक चीज से हम उपदेश ले सकते हैं। जैसे एक कन्या है और उसको उपदेश दे दिया जाता है विवाह होने के बाद कि तेरे पति का ये नाम है, वो जब ससुराल में जाती है तो अपना जो नाम है उसको उसी वक्त भुला देती है और उसे पति के नाम पर ही समझो कि अपना नाम कायम कर लेती है। घर में लोग पुकारते हैं कि द्रौपदी भाई, तो द्रौपदी के नाम से दौड़ कर आती है और ससुराल के वहां पुकारी जाती है नारायण की स्त्री, तो वो नारायण की स्त्री के नाम से ही दौड़ कर आती। इसके कैसे संस्कार जम गए, एक प्रकार से हृदय के वहां प्रवेश हो गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं नारायण की स्त्री हूं। इसी प्रकार से थी समझो कि हम लोग धारण नहीं कर सकते तो उस कन्या के समान भी हम लोग नहीं हुए। महात्मा जो पुरुष है अरुण के जो चरित्रों को हम लीला का रूप देवे तो उसको देख देख करके हमारे चित्त में इतनी प्रसन्नता होगी जिसकी कोई सीमा नहीं रही, सीमा यह तो नहीं रही। हमारे मन के विपरीत हम जैसा देखें, किंतु जब हमारी श्रद्धा होगी तो विपरीत भावना तुरंत मिल जाएगी और वो सारी क्रिया हमको अनुकूल दिखने लगेगी। जब महात्मा में हमारी महात्मा बुद्धि हो जाएगी तो उनका कोई भी चरित्र जो हमको विपरीत नहीं दिखेगा, उनका बोलना चालना सब एक प्रकार से अनुकूल प्रतीत होगा। हमारे मन की धारणा एक है और महात्मा का कहना एक है, किंतु जब उस महात्मा में हमारी श्रद्धा हो जाएगी तो हमारी भावना तुरंत बदल जाएगी। हम अपने निश्चय को छोड़ करके और उस महात्मा के निश्चय के अनुकूल बन जाएंगे। तो आप बताइए फिर उद्धार होने में विलंब क्या है? महात्मा पुरुष जो आज्ञा करता है और उसे काम पालन करते हैं, समझो कि भय से या उनके संकोच से या कोई लोभ से या कोई समझो कि लज्जा से, तो वो एक प्रकार से श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो वो है कि हमारे मन की कितनी भी विपरीत क्यों नहीं हो, एक प्रकार से थी वो बात हमारे को लाभदायक आनंददायक प्रतीत हो, और उनकी बात को सुनकर के हम बड़ी प्रसन्नता से उसको काम में लावे, तो ये श्रद्धा है। हमारे मन के विपरीत बात को सुनकर के केवल प्रसन्नता से काम में नहीं लावे, ये प्रकार से थी आपने अपना हवो भाग समझे और मुग्ध हो जावे, और समझो कि हमारे बारंबार रोमांच होने लगे, तो समझना चाहिए इसकी विशेष श्रद्धा है। इतना ही नहीं कि एक प्रकार से हम उस को सुनकर के और इतने मुग्ध हो जावे कि हमारी काया पलट हो जावे, हमारा जीवन बदल जावे और एक प्रकार से भी भगवान का दर्शन होने लगे।
श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र की और मुग्धवंशी।